समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, परिक्रमा कार्यक्रम में आप सबका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में जानेंगे देश दुनिया के समाचार, चलेंगे क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे क्या कुछ खास है उनके पास, खेल के मैदान की हलचल होगी और उन विशिष्ट व्यक्तित्वों के भी हम बात करेंगे जो आज के दिन इस दुनिया में आए या जिन्होंने आज ही के दिन इस दुनिया को कहा अलविदा। आज परिक्रमा के इस अंक में मैं हूं लवली निगम और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी अनुजा कुमार। अनुजा नमस्कार। सभी जानते हैं कि आज हम अहिंसा दिवस मना रहे हैं और आज ही वन्य जीव सप्ताह आज से शुरू हो रहा है। भारत के वनस्पतियों और जीवों की सुरक्षा तथा संरक्षण के उद्देश्य से भारत में यह सप्ताह हर साल 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक मनाया जाता है।
राइट, हेलो एंड नमस्कार, गुड आफ्टरनून लवलीन। With a number of special days, as you just mentioned, being observed today, the 2nd October becomes a very important date.
Ji.
First of all, we celebrate the day as Gandhi Jayanti. Mahatma Gandhi was born as an ordinary man, yet his extraordinary deeds and non-violence philosophy changed the world we see today. As a heartwarming tribute to the great man, today we will have our dateline discussion on his belief in non-violence. The day is declared as the International Day of Non-Violence by the United Nations. The celebration of Wildlife Week will be observed all over India from the 2nd to the 8th of October. The main objective of this campaign is to promote the conservation and protection of animal life. World Habitat Day is also celebrated on the first Monday of October each year. This year, World Habitat Day is being observed on 2nd of October, providing a platform for discussions and initiatives focused on urban development and housing. Last but not the least, we also pay our gratitude to an exemplary leader and one of the greatest reformers of India, the second Prime Minister of our country, Sri Lal Bahadur Shastri, on his birth anniversary. A humble and simple man whose slogan, Jai Jawan, Jai Kisan, continues to inspire millions across the nation to unite for the cause of building Atmanirbhar Bharat. So these were the special days, people, personalities we remember today. And now let's begin with the news headlines first.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में 7000 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि इससे बुनियादी ढांचे, संपर्क और शिक्षा पर परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ेगा।
Prime Minister to visit Madhya Pradesh to launch multiple development initiatives worth around 19,260 crore rupees.
दिल्ली पुलिस ने पुणे मॉड्यूल मामले में एनआईए की सूची पर मोस्ट वांटेड आतंकवादी को गिरफ्तार किया।
ओवर 50,000 पीपल टेक प्लेज टू डोनेट देयर ऑर्गन्स अंडर द आयुष्मान भव कैंपेन लॉन्च्ड लास्ट मंथ।
और हांगचो एशियाई खेलों में भारत ने आज स्केटिंग रिले में 2 कांस्य पदक और टेबल टेनिस में 1 कांस्य पदक अपनी झोली में डाला।
And Lavleen, now it's time for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at national or global level. And of course, today, as we mentioned, focus is on International Day of Non-Violence. Today is the International Day of Non-Violence. The day is observed on the 2nd of October every year to honor Gandhian principles. The United Nations General Assembly, in a resolution adopted on 15th of June 2007, established the commemoration as an occasion to spread the message of non-violence through education and public awareness. The resolution reaffirms the universal relevance of the principle of non-violence and the desire to secure a culture of peace, tolerance, understanding, and non-violence. Non-violence is the greatest force at the disposal of mankind. It is mightier than the mightiest weapon of destruction devised by the ingenuity of man, as said by Mahatma Gandhi.
जी, ये दिन अहिंसा का संदेश देने के लिए पूरे विश्व में मनाया जाता है। गांधी जी दुनिया भर में अहिंसक आंदोलनों के प्रेरणा स्रोत रहे हैं। कठिन चुनौती के बावजूद भी वो अहिंसा में अपने विश्वास के प्रति प्रतिबद्ध रहे और भारत को आजादी दिलाई। भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्वतंत्रता संग्राम ने अहिंसा की अनूठी अवधारणा के माध्यम से
उपनिवेशवाद और उसके मानवाधिकारों के उल्लंघन का विरोध किया। इसे सत्याग्रह के माध्यम से कार्यान्वित किया गया। बुराई के प्रति अहिंसक प्रतिरोध द्वारा सत्य पर कायम रहना, गलत को स्वीकार करने से इंकार करना। संस्कृत में अहिंसा शब्द का अर्थ है चोट न पहुंचाना और करुणा। हिंसा चोट या क्षति है, अहिंसा इसके विपरीत है, यानी कोई चोट नहीं पहुंचाना, कोई नुकसान नहीं पहुंचाना। अहिंसा को अहिंसा के रूप में भी जाना जाता है और ये प्राचीन भारतीय धर्मों में सभी जीवित प्राणियों पर लागू होता है, जिसमें सभी जानवर भी शामिल हैं।
यस लवलीन, महात्मा गांधी सक्सेसफुली प्रमोटेड द प्रिंसिपल ऑफ अहिंसा टू ऑल स्फीयर्स ऑफ लाइफ, इन पर्टिकुलर टू पॉलिटिक्स। हिज नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस मूवमेंट वॉज रिवोल्यूशनरी। इट वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट अहिंसा वॉज used as a political weapon to influence the oppressors. It had an immense impact on India, impressed public opinion in Western countries, and influenced several 20th century leaders of various civil and political rights movements such as Nelson Mandela and the American civil rights movements, Martin Luther King Jr. and James Bevel. In Gandhi's thoughts, ahimsa precludes not only the act of inflicting a physical injury, but also mental states like evil thoughts and hatred, unkind behavior such as harsh words, dishonesty and lying, all of which he saw as manifestations of violence incompatible with ahimsa. Gandhi believed ahimsa to be a creative energy force encompassing all interactions, leading oneself to find satya, the divine truth.
दरअसल आज दुनिया जिन चुनौतियों का सामना कर रही है उनमें से हिंसा की व्यापकता को उसके सभी रूपों में शांति की संस्कृति में बदलने की चुनौती है। एक ऐसी शांति जो केवल युद्ध की अनुपस्थिति से परे है, जिसमें न्याय और करुणा के साथ रहना, मानवाधिकारों और जिम्मेदारियों और विविधता का जश्न मनाना है। हिंसक उग्रवाद को रोकने और युवाओं को कट्टरपंथ से मुक्त करने में शिक्षा की भूमिका को हाल ही में वैश्विक स्वीकृति मिली है। इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम दिसंबर 2015 में हिंसक उग्रवाद को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव की कार्य योजना की शुरुआत थी, जो इस घटना के चालकों को संबोधित करने के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के महत्व को पहचानती है।
राइट, विद गांधी द नोशन ऑफ नॉन वायलेंस अटेन्ड अ स्पेशल स्टेटस। ही नॉट ओनली थियोराइज्ड ऑन इट, ही अडॉप्टेड नॉन वायलेंस एज अ फिलोसफी एंड एन आइडियल वे ऑफ लाइफ। ही मेड अस अंडरस्टैंड दैट द फिलोसफी ऑफ नॉन वायलेंस इज नॉट अ वेपन ऑफ द वीक, it is a weapon which can be tried by all. Mahatma Gandhi is indisputably India's gift to the world. The pursuit of peace through the practice of truth, that is satyagraha, non-violence, that is ahimsa, compassion and kindness is his gift to humanity. Though the centrality of education, like non-violence, is almost conclusive, the type of education that is necessary for peace is what has never been addressed in any serious manner. There is a need for education not as the usual intellectual exercise of regurgitation, but a journey through self of building peace first with the self before the society.
और अब समय हो चुका है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष समाचार है। अनुजा, आज कहां से शुरुआत कर रहे हैं?
इनफैक्ट द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर अनाउंस्ड एन ई ऑक्शन इवेंट टुडे शोकेसिंग एन अरे ऑफ गिफ्ट्स एंड मेमेंटोज रिसीव्ड बाय आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, विच विल बी हेल्ड लाइव टिल द 31st ऑफ अक्टूबर। To participate in it, the public can register at the website pmmementos.gov.in. Minister of State for Culture Meenakshi Lekhi has requested everyone to participate in this e-auction, saying that artifacts are a medium to showcase our rich cultural heritage, and she hopes that when these artifacts will reach the homes of people, the culture and civilization of our rich heritage will also reach there along with it. The proceeds from this auction will support the noble Namami Gange initiative. This flagship initiative of the government is dedicated to preserving and restoring our national river, the Ganga. We have a report on this.
More than 912 gifts received by the Prime Minister will be available on the website for e-auction. These mementos showcase an array of traditional art forms including paintings, intricate sculptures, indigenous handicrafts and enchanting folk and tribal artifacts. Among these items, some are conventionally bestowed as symbols of honor and reverence. including traditional angavastrams, shawls, headgear and ceremonial swords. The most expensive memento is the painting of Banaras Ghat, which costs around 65 lakh rupees. The digital images are available starting at rupees 100. The standout artifacts of this e-auction encompass replicas of architectural wonders like the Mojhera Sun Temple and Vijay Stambh of Chittorgarh. Noteworthy pieces such as Chamba Rumal, Pattachitra, Dhokra art, Gond art, and Madhubani art mirror the enduring and profound cultural essence, encapsulating both tangible and intangible facets of diverse communities. This is Aishwarya Rai Nigam for Parikrama, Delhi.
And Lavleen, we all know that the Swachhata campaign is going on. And in Gujarat, mega cleanliness drives are being organized to pay tribute to the father of the nation, Mahatma Gandhi, on his birth anniversary today. We have more on this from our correspondent from Ahmedabad.
गांधी जयंती के अवसर पर आज मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने पोरबंदर में महात्मा गांधी जी के जन्मस्थल कीर्ति मंदिर में आयोजित सर्वधर्म प्रार्थना में सहभागी होकर महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पण की। अहमदाबाद में साबरमती आश्रम में भी सुबह सर्वधर्म प्रार्थना के आयोजन के साथ गांधी जयंती मनाई गई। उसके बाद आश्रम में प्रसिद्ध गांधीवादी उषाबेन ठक्कर का प्रवचन भी हुआ। गुजरात के राज्यपाल और गुजरात विद्यापीठ के कुलाधिपति आचार्य देवव्रत ने विद्यापीठ की 100 साल की यात्रा को दर्शाते पुस्तक के दूसरे संस्करण का आरंभ किया। वर्ष 1920 में महात्मा गांधी द्वारा इस विद्यापीठ की स्थापना की गई थी। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला की उपस्थिति में अमरेली में गांधी वंदना कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस अवसर पर श्री रूपाला ने अन्य भाजपा नेताओं के साथ खादी की खरीदारी भी की थी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जैसे पर्यटन स्थलों सहित राज्य के विभिन्न स्थानों पर आज स्वच्छांजलि कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। स्थानीय कारीगरों को बढ़ावा देने के लिए राज्य में आज से खादी प्रदर्शनियां भी आयोजित की जा रही है, जिसमें राज्य के मंत्री और अग्रणी नेता खादी की सामूहिक खरीदारी कर रहे हैं। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
चीन में चल रहे एशियाई गेम्स में महाराष्ट्र के बीड जिले के निवासी अविनाश साबले ने कल हुए स्टीपल चेस में गोल्ड मेडल जीता। अत्यंत सामान्य परिवार से आए अविनाश की बहुत बड़ी उपलब्धि इसे कहा जा सकता है। अविनाश के माता पिता ने कभी खेतों में तो कभी ईंट के भट्टों पर मजदूरी कर अपने बच्चे को पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, और ये उनकी ही मेहनत है जो आज रंग लाई है और उनके जीवन में स्वर्ण क्षण लेकर आई है। एक रिपोर्ट हर्षवर्धन से।
1 अक्टूबर 2023 ये तारीख पूरे मराठवाड़ा के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखी जाएगी, क्योंकि मराठवाड़ा के बीड जिले से आए एक सामान्य परिवार के बेटे ने एशियाई खेलों में भारत को इसी दिन स्वर्ण पदक दिलाया है। बीड के अविनाश साबले ने स्टीपल चेस में देश को पहला स्वर्ण पदक तो दिलाया ही, साथ में नया विश्व विक्रम भी स्थापित किया है। स्टीपल चेस अर्थात बाधा दौड़ में ये सफलता पाने के लिए अविनाश को वास्तविक जीवन में भी कई बाधाओं को पार करना पड़ा। आज उसे मिली सफलता से उसका पूरा परिवार आनंदित है। अपनी यही खुशी अविनाश के पिता मुकुंद साबले ने आकाशवाणी के साथ साझा की।
मेरा बेटा अविनाश साबले रहता है ना, बचपन से कॉलेज का जाता तो खेलने का खेलता है, ऐसा काम करता है कि एक नंबर का पूरे खेल खेलता है। आर्मी में ड्यूटी करता है, वो खेल में भाग लेता है, उसको भी भाग लेता है तो एक रुपए पदक मिलता है पहली बार, दूसरे बार का स्वर्ण पद मिलता है। बहुत देश से नाम रोशन करता है भैया, और हमको भी बहुत अच्छा लगता है कि लड़का हमारा गरीब कुटुंब का रहता है उसका देश से नाम रोशन करता है, हमारे गाँव में करता है, जिले में करता है। मेरे बेटे को मेरा आशीर्वाद, कुटुंब परिवार का पूरा पूरा आशीर्वाद रहता है, नाम रोशन करता है बेटा, देश का नाम करता है। हमको परिवार का सब भावना, कुटुंब परिवार को शुभेच्छा रहता है।
अविनाश की सफलता पर न केवल अविनाश का परिवार बल्कि हर वह व्यक्ति आनंदित होगा जिसने अविनाश को यहाँ तक पहुँचने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहायता की होगी। अपने आसपास समाज में और भी ऐसे कई अविनाश हैं जो अलग अलग क्षेत्र में स्वर्णिम प्रदर्शन कर सकते हैं। आवश्यकता है तो उनके मार्ग की बाधाओं को एक साथ मिलकर लांघने की। पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के शब्दों में कहे तो बाधाएं आती है आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। परिक्रमा के लिए रवि उबाले के साथ छत्रपति संभाजी नगर से मैं हर्षवर्धन दीक्षित।
And now let's move to Punjab. In Punjab, the paddy procurement began yesterday and the state government has made a foolproof arrangements in different mandis.
none of the rice mills has been made a procurement center, and it has been made mandatory for cartage contractors as well as millers holding custom milled rice to provide information about the quantity they are available with. On the first day, more than 20,000 quintals of paddy was procured in Asia's largest Khanna Mandi in Ludhiana district. Let's hear a report from our correspondent from there.
It is said that Mahatma Gandhi's Dandi March took the form of a big convoy and thousands of people participated in this march. After the death of Gandhiji, his ashes were floated in the Satluj River in the area of Panjdhera village near Fillore in Jalandhar district. Later, a memorial was also built in the village on which Bapuji's 11 woes, including truth, non-violence and celibacy, have been written, which the father of the nation followed throughout in his life. Shishu Sharma Shantal, Akashwani News, Jalandhar.
And it's time to listen to yet another chapter from India's freedom struggle and recall events that happened on this day. Mahatma Gandhi, an apostle of non-violence and preacher of truth, was born on 2nd of October 1869 in Gujarat. Gandhiji studied law at the University of Bombay for 1 year, then at the University College London, and was admitted to the Bar of England. He returned to Bombay and practiced law there for 1 year, then went to South Africa to work for an Indian firm in Natal. In 1906, Gandhiji, for the first time, organized a non-violent resistance against the Transvaal Government's Registration Act. He was jailed on many occasions, along with thousands of his supporters.
Back in India, Gandhi became active in the struggle for Indian independence. Sachai ka lekar shastra, aur ahimsa ka leastra. In 1918, Gandhiji opposed the increasing tax levied by the British during the devastating famine. He was arrested in Champaran in Bihar for organizing civil resistance.
He urged Indians to replace British goods with their own fabrics and goods.
On New Year's Eve, December 31st, 1929, the Indian National Congress unfurled its flag of independence.
From March 12th to April 6th, 1930, Gandhiji made the famous Salt March to Dandi. The successful campaign led to the reaction of the British government and imprisonment of over 60,000 people for making or selling salt without a tax.
The British opened fire on the unarmed crowd and shot hundreds of demonstrators. Eventually, the British government, represented by Lord Irwin, signed the Gandhi-Irwin Pact in March 1931, agreeing to free all political prisoners.
Gandhiji campaigned to improve the lives of the so-called untouchables. His Quit India campaign led to mass arrests on an unprecedented scale of struggle. He was arrested in Bombay and was held for 2 years.
During his captivity, his wife Kasturba passed away and his secretary Mahadev Desai also died.
India won independence in 1947, followed by partition of India. Gandhiji was pained by the clashes that happened after partition. On 30th of January 1948, Gandhiji was assassinated while on his way to a prayer meeting.
The ashes of Mahatma Gandhi were split in portions and sent to all states of India to be scattered in rivers.
Today marks the birth anniversary of another sterling personality of India, Lal Bahadur Shastri. Shastri was born on 2nd of October 1904 in Mughalsarai. He had his education in Uttar Pradesh. Inspired by the Mahatma's call for students to withdraw from government schools and join the non-cooperation movement,
Shastri withdrew from school the next day, actively participating in picketing and anti-government demonstrations.
He was soon arrested and jailed, but was then let off as he was still a minor. Among the first students of the new institution, Kashi Vidyapeeth, a nationalist institution, Shastri graduated with a first-class degree in philosophy and ethics in 1925. He was given the title Shastri, meaning scholar.
He was imprisoned several times during the freedom struggle.
Following India's independence, Shastri ji became the Minister of Police and Transport in Uttar Pradesh. As the Transport Minister, he was the first to appoint women conductors.
Later, Shastri ji was made Union Railways Minister in the first cabinet of Republic India in 1952. He also served as the Minister of Commerce and Home Minister.
After the demise of Jawaharlal Nehru, Lal Bahadur Shastri became the second Prime Minister of India. He promoted the White Revolution, a national campaign to increase the production and supply of milk, underlining the need to boost India's food production. Shastri also promoted the Green Revolution in India in 1965.
Shastri ji charged the entire nation with the same enthusiasm during the 1965 India-Pakistan War, just the way Gandhi had done during the national movement before independence.
While Gandhi's slogan was do or die, Shastri proclaimed Jai Jawan, Jai Kisan. Their philosophy was rooted in spirituality. They practiced what they preached.
That brings us to the end of this episode of Azadi Ka Safar.
और अनुजा अब रुक करते हैं खेल के मैदान का.
खेलों की बात करते हैं तो खेलों के कुंभ चल रहे हैं चीन के हांगचो में एशियाई खेल. वहां हमारे खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं. आज का क्या परफॉर्मेंस उनका है जानते हैं मुकेश से.
चीन में हांगचू एशियाई खेलों में आज भारत ने तीन और कांस्य पदक जीत लिए. इसके साथ ही भारत के पदकों की संख्या 56 हो गई है. स्पीड स्केटिंग में भारतीय महिला और पुरुषों की टीम ने कांस्य पदक जीता. भारत को टेबल टेनिस में महिला डबल्स का भी कांस्य पदक मिला. टेबल टेनिस में सुतीर्था और अहिका मुखर्जी की जोड़ी को सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा. पुरुष हॉकी में भारत ने बांग्लादेश को 12-0 से हरा दिया. महिला कबड्डी में भारत और चीनी ताइपे का मुकाबला 34-34 अंक की बराबरी पर समाप्त हुआ. बैडमिंटन के सिंगल्स में किदाम्बी श्रीकांत और डबल्स में सात्विक साईराय रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी अगले दौर में पहुंच गई है. बैडमिंटन के मिक्स डबल्स में कृष्णा प्रसाद और तनिषा क्रिस्टू की जोड़ी महिला डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है. स्क्वाश के मिक्स डबल्स में अनाहत और अभय की जोड़ी ने थाईलैंड को 2-0 से हराया. एथलेटिक्स में आज महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ में भारत की विद्या रामाराज ने 55.42 सेकंड के समय के साथ फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया. इसी के साथ विद्या ने पीटी उषा के लॉस एंजलिस ओलंपिक में बनाए गए राष्ट्रीय रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली. तीरंदाजी में भारत के खिलाड़ियों ने सभी पुरुष और महिला कंपाउंड स्पर्धा के प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले जीत लिए. अभिषेक वर्मा ने सऊदी अरब आया. ओजस देवताली ने कुवैत के अहमद अल शक्ति को हराया. ज्योति सुरेखा वेन्नम ने श्रीलंका की अनुराधा करुणा रत्ने को और अदिति गोपीचंद स्वामी ने नेपाल की इमुंग रॉय को हराया. गोताखोरी में आज भारत के 1 मीटर स्प्रिंग बोर्ड के फाइनल में लंदन सिंह हिस्सा लेंगे. पदक तालिका में भारत 13 स्वर्ण 21 रजत और 22 कांस्य पदकों के साथ कुल 56 पदक लेकर चौथे स्थान पर है. चीन पहले, जापान दूसरे और कोरिया तीसरे स्थान पर है. परिक्रमा के लिए मैं मुकेश कुमार.
And now coming to our last segment of paying tributes to some great personalities, from where are we beginning today, Lovleen?
जी आज शुरुआत करते हैं विख्यात चित्रकार राजा रवि वर्मा से जिनकी आज पुण्यतिथि है. उन्होंने भारतीय साहित्य और संस्कृति के पात्रों का चित्रण किया है. उनके चित्रों की सबसे बड़ी विशेषता हिंदू महाकाव्यों और धर्म ग्रंथों पर बनाए गए चित्र हैं. हिंदू मिथकों का बहुत ही प्रभावशाली इस्तेमाल उनके चित्रों में दिखता है. इस संग्रहालय में उनके चित्रों का बहुत बड़ा संग्रह है. जनसाधारण में राजा रवि वर्मा की लोकप्रियता इतिहास पुराण और देवी देवताओं के चित्रों के कारण हुई, लेकिन तैल माध्यम में बनी अपनी प्रतिकृतियों के कारण वे विश्व में सर्वोत्कृष्ट चित्रकार के रूप में जाने गए. उन्होंने पारंपरिक तंजावुर और यूरोपीय कला का संपूर्ण अध्ययन कर उसमें महारत हासिल की थी और भारतीय परंपराओं की सीमाओं से बाहर निकलते हुए चित्रकारी को एक नया आयाम दिया.
And today is also the birth anniversary of India's first health minister and her efforts for reforming the nation, Rajkumari Amrit Kaur. She had been associated with the Indian independence struggle before she was appointed as the first health minister of India and held the position for the next 10 years. Before she assumed charge as the health minister, she served as secretary to Mahatma Gandhi. During her tenure, Kaur undertook several reforms that transformed India's healthcare. She laid the All India Institute of Medical Sciences Foundation stone and inaugurated Lady Irwin College in Delhi. She was born in the royal family of Kapurthala, thus the prefix of Rajkumari to her name. She had studied at Oxford University. After returning to India, she felt a connection with Mahatma Gandhi's work. Apart from working on the cause of independence, she worked on several other social causes like child marriage, parda, and the Devadasi system as well. When she was jailed after the Quit India movement, she carried with her a spinning wheel, the Bhagavad Gita and the Bible. While advocating for equality, she sided with no reservations for women and the universal adult franchise, stating that equal opportunities would increase women participation in legislative and administrative institutes of India.
और अब बात करते हैं तपन सिन्हा की जिनकी आज जयंती है. बांग्ला और हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध निर्देशक थे. इन्हें 2006 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी मिला. तपन सिन्हा की फिल्में भारत के अलावा बर्लिन, वेनिस, लंदन, मॉस्को जैसे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में भी सराही गई हैं. तपन सिन्हा ने अपना करियर न्यू थिएटर में साउंड इंजीनियर के रूप में शुरू किया था. वहां रहते उन्होंने बिमल रॉय और नितिन बोस की कार्यशैली को गंभीरता से देखा और सीखा. फिल्मकार सत्येन बोस की फिल्म परिवर्तन का साउंड डिजाइन करने के बाद तपनदा लंदन के पाइनवुड स्टूडियो में गए. वह तपन सिन्हा ने हमेशा कम बजट की फिल्में बनाई. सामाजिक सरोकार के साथ उनकी फिल्में दर्शकों का स्वस्थ मनोरंजन करने में हमेशा कामयाब रहीं और उन्हें 19 बार राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं. सामाजिक कॉमेडी, बाल फिल्मों के अलावा साहित्य आधारित फिल्में बनाने पर उन्होंने अधिक ध्यान दिया.
एंड ही ऑल्सो रिसीव द दादा साहेब फाल्के अवार्ड इन 2006.
जी.
And the next personality is from
इसके
the Hindi literature.
शंकर शेष की बात करते हैं. उनका जन्म 2 अक्टूबर 1933 को बिलासपुर में हुआ था और हिंदी के प्रसिद्ध नाटककार तथा सिनेमा और कथा लेखक थे. नाटक साहित्य क्षेत्र के महत्वपूर्ण नाटककारों में से वो एक थे. समकालीन परिवेश और युगीन परिस्थितियों से उनके व्यक्तित्व की संवेदनशीलता का निर्माण हुआ था. शंकर शेष बहुआयामी प्रतिभाशाली लेखक के रूप में पहचाने जाते हैं. उनके फंदी, एकता द्रोणाचार्य, रक्त बीज आदि नाटकों ने उनकी ख्याति काफी बढ़ा दी थी. शंकर शेष अत्यंत सहृदय और गुटनिरपेक्ष लेखक थे. उनके द्वारा रचित घरौंदा कथा पर हिंदी में एक प्रसिद्ध फिल्म भी बनी थी. शंकर शेष युग चेतना के कलाकार हैं, इसलिए उनकी रचनाओं में सामाजिक असंगतियों का खुला चित्रण है. रत्नगर्भ, रक्त बीज, बाढ़ का पानी, पोस्टर, चेहरे, राक्षस, मूर्तिकार, घरौंदा जैसे नाटक सामाजिक यथार्थ को उन्होंने नया रूप दिया.
एंड टुडे वी ऑल्सो विश अ वेरी हैप्पी birthday to Asha Parekh, the Indian actress, film director and producer who worked in Hindi films, regarded as one of Hindi cinema's finest actresses, who had been giving many popular hits in songs in her movies.
बंगले के पीछे से
और चलते चलते अनुजा हम 26 वर्षीय महिला बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन को भी जो है जन्मदिन की मुबारकबाद देते हैं और उम्मीद करते हैं एशियन गेम्स में वो प्रदर्शन कर रही हैं, पदक की दावेदार बनी हुई हैं। पेरिस ओलंपिक के लिए उन्होंने क्वालिफाई कर लिया तो उम्मीद करते हैं कल वो कोई मेडल दिलाएं। और श्रोताओं अब समय हो चुका है आपसे अनुमति लेने का, लवली निगम और अनुजा की तरफ से नमस्कार।